मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 12 जून 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 12 जून है, यानी कि आज से 6-7 दिन के बाद, मतलब नेक्स्ट मंडे कह लीजिए, डेट को हम हटा देते हैं, नेक्स्ट मंडे को जब मैं इसी गर्म जोशी के साथ फिर से आप लोगों का स्वागत करूंगा, तब तक आप में से बहुत से स्टूडेंट जो प्री एग्जाम में बैठ रहे हैं वो ऑलरेडी बैठ चुके होंगे और उनके आंखों के सामने अपना वह रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि क्या होने वाला है। देखिए, बहुत कुछ तो हमें पता चल ही जाता है। दोस्तों, अब 6 दिन आने में अब वक्त नहीं है, तो मेरी एक फिर से बहुत ही आपको सिंसियर एडवाइस है और वो एडवाइस यह है कि चूंकि जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, आप ये कह लीजिए कि आप ज्यादा क्रूशियल पीरियड में एंटर करते जा रहे हैं। क्रूशियल पीरियड में एंटर करने का मतलब है कि आपके लिए समय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पहला तो यह कि आपको अपने हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ। और दूसरा मित्रों यह कि एग्जामिनेशन चूंकि नजदीक आते जा रहा है, तो आपको अपने समय के उपयोगिता का भी ध्यान रखना है, यानी कि कैसे आप अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग बड़े केंद्रित तरीके से, बड़े फोकस्ड तरीके से अपने एग्जामिनेशन के लिए करें। और 18 तारीख की शाम के बाद तो फिर पूरा का पूरा समय आपके अपने हाथ में ही है, काफी कुछ आपको पता लग जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, जो उनको फेंस पर खड़े होते हैं, समझ लीजिए लगता है कि होगा भी नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत क्लियर कट समझ जाते हैं कि नहीं मेरा तो हो रहा है, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो क्लियर कट समझ जाते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी एक नई शुरुआत वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो मित्रों, चलिए आज के इस सप्ताह की नई शुरुआत पर मेरी एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, अब न्यूज एनालिसिस के तहत जो हम पिछले पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, उसी पैटर्न को आज भी कंटिन्यू करना चाहूंगा। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, भारत में वर्ग व्यवस्था को लेकर। याद रखिए, ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, यानी ये जाति पर आधारित वर्ण व्यवस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो चतुर्वर्ण की हम बात करते हैं, मैं वर्ग व्यवस्था की बात कर रहा हूं, क्लास करेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक और मजेदार बात है कि मैं जो क्लास करेक्टर की आपसे बात करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, ये मैं अभी एक फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, फिल्म का नाम ही है हिंदी मीडियम, शायद आप लोगों ने देखा होगा, इरफान साहब की थी, बड़ी ही खूबसूरत फिल्म थी, और मैं अपनी बात कहने के लिए उस फिल्म को आधार बना रहा हूं। मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि आप सब सोच रहे होंगे कि सर फिल्म के कुछ ज्यादा ही शौकीन हैं, अभी तक तो उनकी जो फिल्म पर बात करने का जो तौर तरीका था वो लाइफ मैनेजमेंट तक सीमित था, लेकिन अब तो वो हमारे सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हैं। यस दोस्तों, मैं इस बात से कहीं कोई परहेज नहीं करता, मुझे तो ये लगता है कि बस बात समझ में आनी चाहिए, बात समझाई जानी चाहिए, फिर चाहे वह फिल्म हो, चाहे वह कहानी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मकसद समझना और समझाना है, मकसद माध्यम नहीं है कि नहीं इसी माध्यम से ही समझाया जाना चाहिए। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि मुझे नहीं मालूम कि आपने ये हिंदी मीडियम फिल्म देखी या नहीं देखी, लेकिन जितनी खूबसूरत तरीके से फिल्म बनाई गई है, जिस तरीके से इसकी चर्चा हुई है, हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपने जरूर देखी होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूं। और यदि मैं गलत मान रहा हूं तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे सही कर दें, सही कर दें, यानी कि आप इस फिल्म को जरूर देख लें, और वो भी तब यदि आपको मेरे इस विषय को अच्छे से समझना है तो। और यदि पहले से ही आप इस विषय को जानते हैं या आपको यह विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो फिर आपकी मर्जी है, देखें या ना देखें, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस विषय को आपको जानना चाहिए, या तो आप जान रहे होंगे और नहीं जान रहे होंगे तो फिर आप मेरी बात थोड़ी सी मान लीजिए और फिल्म देख लीजिए और इसके बाद फिर से मेरे इस ऑडियो लेक्चर को आप सुनिए तो आप देखेंगे कि कैसे वो सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से आपकी समझ में आ गई है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस वर्ग व्यवस्था पर जो भारत में है। मित्रों आपने कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना ही होगा। सन 1850 के आसपास के वो दार्शनिक रहे हैं, ज्यादातर समय उन्होंने इंग्लैंड में बिताया और इंग्लैंड में रह करके ही उन्होंने अपना मार्क्सवाद का सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने बहुत से थ्योरीज दी हैं, उसी में से एक थ्योरी है वर्ग चरित्र की। यहां मैं थोड़े से आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में वर्ग और जाति, जो भारत में हम जिसे जाति कहते हैं, उसमें क्या थोड़ा सा फर्क है। देखिए हमारा जो जाति चरित्र है वो कास्ट जो हमारे यहां बनी है वो प्रोफेशन के आधार पर बनी है, बनाई गई शुरू में, कि जो जिस काम को कर रहा था धीरे धीरे उसे उस जाति का मान लिया गया। चार मूल वर्ण व्यवस्था बना दी गई और उसमें से उनका विभाजन कर दिया गया। सच पूछिए तो मार्क्स भी कहीं ना कहीं इसी तरह की बात करते हैं। इस तरह की बात इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो क्लास, जो वर्ग को परिभाषित किया कि ये वर्ग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो उन्होंने दिया कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल और एक आदर्शवादी व्यवस्था है, एक चेतना है, आदर्शवादी चेतना है, राजनीतिक एवं सैद्धांतिक चेतना है, जो बेसिकली उनके अपने वर्ग के प्रोफेशन से बनती है, प्रोफेशन से बनती है। यानी कि मैं जो काम कर रहा हूं वह काम ही मेरे वर्ग चरित्र का निर्धारण कर देती है। मेरा काम, अब आप देख रहे हैं कि मेरा काम मेरे वर्ग चरित्र का निर्धारण कर देती है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा। इसी को भारतीय व्यवस्था ने कहा जाति, जो पूजा पाठ कराने का काम, जो ज्ञान वर्धन का काम, पढ़ाने का काम करेंगे वो ब्राह्मण। तो आप देख रहे हैं काम और जाति बन गई। जो व्यापार का काम करेंगे वो व्यापारी, वैश्य। यहां भी आपको व्यापार से जुड़ा हुआ तथ्य दिखाई दे रहा है जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में। ठीक यही कार्ल मार्क्स ने अपने शब्दावली में जरा बहुत व्यापक रूप में कहा और उसका कारण यह था वो यूरोप में रहे, यूरोप की व्यवस्था को देखा। हालांकि ठीक है उन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास का अध्ययन किया और बड़े गंभीर अध्येता थे वो, फिर भी उन्होंने वहां से चीजें ज्यादा निकाली हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से और जिसमें यूरोप के देश ज्यादातर उसमें शामिल रहे हैं, तो उन्होंने ये बात कही। अब आप देखिए कि फ्रेंड्स आगे वो क्या कहते हैं। पहले हम उनकी परिभाषा को समझ लेते हैं, है ना, फिर हम आगे बात करेंगे। हो सकता है कि शुरू में अभी आपको चीजें थोड़ी सी दुरूह सी लगें, कठिन सी लगें, बहुत क्लियर ना हो, लेकिन आप धैर्य रखिए, मैं बातें बिल्कुल क्लियर आपके लिए करूंगा। उन्होंने फिर यह कहा कि ये जो एक क्लास जो होता है, एक वर्ग जो होता है, वो वर्ग विशेष का क्या होता है कि इस वर्ग विशेष, जैसे एक वर्ग के लोग हैं तो उस वर्ग के लोगों का जो एक कॉमन इंटरेस्ट होता है और उसको उन्होंने कहा कि कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब सभी के जो आर्थिक हित होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अब आप जाति पर चले जाएगा, पुरोहित वर्ग है उसके एक जैसे हित हैं, सत्ताधारी वर्ग है उसके एक जैसे हित हैं, मैं जाति व्यवस्था के तहत कह रहा हूं, जैसे हमने क्षत्रिय माना तो एक जैसे आर्थिक हित हैं, एक जैसे उनके आर्थिक हित होते हैं और वो अपने इन आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए, है ना, उसको फुलफिल करने के लिए, बट नेचुरल है कि वो एक ही जैसे एक्शन लेंगे, एक ही जैसा काम करेंगे, एक ही जैसे उनकी कार्यवाहियां होंगी, एक ही जैसी उनकी गतिविधियां होंगी, सीधी सी बात है। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि बेसिकली जो क्लास है, जो वर्ग है, वो उनके उत्पादन की प्रक्रिया से निर्धारित होता है। कार्ल मार्क्स की शब्दावली थोड़ी सी इसी रूप में है, इसीलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को उनके विचार थोड़े से कठिन लगते हैं और समझने में उनको दिक्कत होती है, तो बहुत जल्दी ऊब भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इसका स्ट्रक्चर है, वो जो वर्ग चरित्र का जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली उत्पादन की प्रक्रिया से निर्धारित होती है। यानी कि जो जिस तरह के उत्पादन के काम में लगा हुआ है वह उसी तरह के क्लास करेक्टर का बन जाता है। तो यहां देखिए, जो उत्पादन में लगा हुआ है, ये उनके अपने बोलने की शैली थी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सिस्टम में वो अपना सिद्धांत दे रहे थे, है ना। तो उन्होंने उत्पादन शब्द वहां ले लिया, अदरवाइज ये प्रोफेशन ही कहना चाह रहे हैं वो, कि जो जो जिस प्रोफेशन में लगा हुआ है उसकी जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है कि किस तरीके से प्रोफेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उसी तरह से उसका क्लास करेक्टर बन जाता है। जैसे एक किसान है तो खेत में बीज बो रहा है, प्रकृति के साथ रह रहा है, तो उसका करेक्टर एक अलग तरीके का बन जाएगा। यानी एक एकेडमिक पर्सन है, वो किताबों में खोया हुआ है, लाइब्रेरी में रह रहा है, अब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो उसका करेक्टर एक अलग तरीके का बन जाएगा। एक योद्धा है, सैनिक है, जो लगातार युद्ध में जा रहा है, कठिन परिस्थितियों में रह रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो ये पूरे के पूरे उसके प्रोफेशन के प्रोसेस हो गए, तो उसका चरित्र, उसकी जो चेतना है वो अलग तरीके से बन जाएगी। इसको उन्होंने कहा क्लास करेक्टर, यानी कि हर वर्ग का अपना एक चरित्र होता है। सामान्य तौर पर जो कार्ल मार्क्स थे फ्रेंड्स, उन्होंने दो वर्ग माने सामान्य रूप में, और उन्होंने कहा कि इतिहास के किसी भी दौर में ये दो वर्ग होते हैं, उसमें से एक वर्ग होता है शोषक और दूसरा वर्ग होता है शोषित। शोषक वर्ग हमेशा एक्सप्लॉइट करता है और शोषित वर्ग उस बिचारे का एक्सप्लॉइटेशन होता है, और इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है, लगातार झगड़ा चलता रहता है, और इसी से विश्व इतिहास आगे बढ़ा है, ये उन्होंने बात कही। राइट, अब मैं आता हूं थोड़ा सा फिल्म हिंदी मीडियम पर कि यह कैसे दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स ने भी यह बात कही है कि जो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और जिसका भी नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर होता है उसका नियंत्रण बाहर की सारी चीजों पर हो जाता है। राइट, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमने अपने संविधान की इस तरीके से व्यवस्था की है कि सभी लोगों को जीवन यापन के समान अवसर मिल सके, समानता की बात कही है। आप देखिए कि पूरे के पूरे उद्देशिका को पढ़िए, अवसरों की समानता, कार्य की समानता, मनुष्य की गरिमा, ये सारी सारी बातें कही गई है। राइट, लेकिन जो हमारी चाहे हमारे संविधान बनाने वाले लोग हों या फिर बाद में सत्ता में आने वाले लोग, यानी कि राजनीति में, आप देखिए कि उस पर उच्च वर्ग का नियंत्रण रहा है। यह बात अलग है कि रिजर्वेशन के माध्यम से हमने कुछ सीटें आरक्षित कर दी थी, लेकिन उस आरक्षित सीटों का भी जो वास्तविक जो लाभ है, उस समय की बात कह रहा हूं मैं, 1980 के आसपास की बात, उनका भी लाभ उस वर्ग को नहीं मिला है, बल्कि वो एक तरीके से डमी कैंडिडेट की तरह काम करते थे। जो शक्तिशाली लोग होते थे, चाहे वो पैसे वाले हों या पुराने राजा महाराजा हों, वो उस जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर देते थे, उनका चुनाव प्रचार करते थे, उनका खर्चा उठाते थे, और वो कैंडिडेट जीत करके आ जाता था। फिर ये लोग जैसा कहते थे, ये राजा महाराजा, उस हिसाब से वो संसद में विधानसभाओं में अपना रोल प्ले करते थे। अब आप देखिए कि किस तरीके से उस डमी सिचुएशन को आप जोड़ करके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 25% सीटें जो रिजर्व की गई है स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत, उसको किस तरीके से उसका इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं। राइट, फिर आप देखिए फ्रेंड्स कि ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिसमें भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसमें आपको इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, इसके बाद आपको पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, नेता मिल जाएंगे, इसके बाद नौकरशाह मिल जाएंगे जो अच्छे पदों पर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन तीनों चारों को मिलकर के एक क्लास बना है जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं। और आपको ध्यान होगा कि उसमें देखिए कि जब फरहान ये बात कहते हैं कि इरफान कहते हैं कि मैं जाकर के शिकायत करूंगा, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि जाओ, तुम कहां जहां जाना है जाकर के शिकायत करो, तुम्हारी बात सुनेगा कौन, क्योंकि जिनसे तुम कहने जाओगे उन सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे वो यहां पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये अपने क्लास इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहां आपको क्लास करेक्टर दिखाई देगा। फिर उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने एक बात ये भी कही थी फ्रेंड्स, कि हमारा वर्ग चरित्र बदलता रहता है। जैसे हम अभी एक वर्ग में है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी मिडिल लेवल क्लास में हूं, मैं बहुत बड़ा नौकरशाह बन जाऊं या बहुत पैसे वाला बन जाऊं या मैं राजनेता बन जाऊं, तो मेरा वर्ग एक बड़े वर्ग में मैं चला जाऊंगा, उच्च वर्ग में चला जाऊंगा, और वहां जाने के बाद मेरा चरित्र बदल जाएगा, फिर मैं अपने पुराने चरित्र के अनुसार काम नहीं करूंगा। इसी में आप देखिए कि जो प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल क्या कहती हैं कि मेरी जो माँ थी वो इसी स्कूल में नौकरानी थी, और फिर उस समय का अपना वो संकट बताती है कि उस समय कैसे मुझे मतलब एक तरीके से बेइज्जत किया जाता था, मुझे इग्नोर किया जाता था, उस त्रास को, सारे संकट को मैंने झेला है। ठीक है, आपने तो सब झेला है, लेकिन अब जब आप उसी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई हैं, तो अब आप देखिए कि वो कैसे, उसके दिमाग में अब उनकी तस्वीरें बिल्कुल नहीं है, कहीं भी उसके मन में ये भाव नहीं है कि वो गरीब बच्चों के हित में आगे आए, क्योंकि मैंने वह दुख झेला है तो कम से कम मैं अब दूसरों को वह दुख झेलने न दूं, इसके लिए कोई प्रयास नहीं होता है। वो खुद उनका अपना वर्ग चरित्र बदल जाता है, अब वो किसको सपोर्ट कर रही है, उच्च वर्ग के लोगों को सपोर्ट कर रही है, वो मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रही है कि ये जो मैनेजमेंट है किस तरीके से इसका हित ज्यादा से ज्यादा सधे, ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, पूरा का पूरा उनका वर्ग चरित्र एकदम से बदल गया है। और फिर आपको वर्ग चरित्र का कमाल वहां दिखाई देता है फ्रेंड्स, जैसे देखिए कि जो इरफान है वो तीन बार वर्ग चरित्र से चल रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है बदलना। देखिए पहले तो वो जब चांदनी चौक वाले एरिया में रहते हैं तो उस तरह का एक वर्ग चरित्र है, लोगों से मिलना जुलना, हा हो हल्ला मस्ती वाला वर्ग चरित्र। इसके बाद वो वसंत विहार एक इलीट क्लास में शामिल हो जाते हैं कि उनकी बच्ची का एडमिशन हो जाए, तो फिर आप देखिए कि कैसे वो इलीट क्लास जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फिर वो बिल्कुल एकदम गरीब लोगों के बीच में चले जाते हैं, फिर वहां गरीब लोगों का वर्ग चरित्र आप देखिए कि कैसे वो आपस में खूब लड़ते हैं झगड़ते हैं, इसके बावजूद कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, उनमें ज्यादा मानवीयता आपको दिखाई देती है ना। जबकि जब ये इलीट क्लास वसंत विहार में रहता था तब आपने देखा कि कहीं कोई मदद की बात ही नहीं थी, लेकिन यहां उनमें मदद है, तो इनका अपना एक वर्ग चरित्र है। इसके बाद फिर बाद में देखते हैं कि जो इरफान है वो फिर पूरी तरह से अपने ही वर्ग चरित्र में आ जाते हैं, जो वास्तविक उनका अपना वर्ग चरित्र है। तो मित्रों, इस प्रकार से इस फिल्म में, हिंदी में मीडियम में, आपको वर्ग चरित्र की अवधारणा बहुत खूबसूरत दिखाई देगी, बहुत अच्छी अच्छे से आपके समझ में आएगी। मैंने आपको वर्ग चरित्र के कुछ बेसिक बातें बताई हैं, अब मैं चाहूंगा कि आप दो काम जरूर करें। एक तो वर्ग चरित्र पर देखिए, अगर आपको कोई लेख मिल जाए तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार मेरे इस ऑडियो को सुन लीजिए, इसके बाद किताब में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और इसके बाद फिर उस फिल्म को देखिए, और फिल्म को वर्ग चरित्र के निगाहों से देखिए कि मुझे इसमें वर्ग चरित्र को समझना है, क्लास करेक्टर क्या होता है। फिर आप देखेंगे कि इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और मित्रों इस टॉपिक पर अगर आपकी अच्छी तैयारी हो गई तो फिर से आपके हाथ में एनालिसिस के लिए एक बहुत स्ट्रांग टूल्स आ जाएगा, बहुत ही वैज्ञानिक टूल्स आ जाएगा। फिर आप किसी चरित्र के विश्लेषण के लिए, घटना के विश्लेषण के लिए आपको एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जिस कसौटी पर आप उस घटना को, उस चरित्र को कस कर दूसरे स्टूडेंट की तुलना में थोड़े से बेहतर दिखाई देने दे सकते हैं। तो मित्रों, जितना भी थोड़ा सा वक्त था उसमें मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, और मैं चाहूंगा कि आप इस विषय को आगे बढ़ाएं और इसे बहुत अच्छे से समझें, ये पूरी जिंदगी आपके काम आएगा, पूरी जिंदगी, सिर्फ केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं बल्कि दूसरों को समझने की दृष्टि से, दूसरों के बारे में निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से भी यह टॉपिक आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।